તારીખ 16/2/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 44.
કેવું અજ્ઞાન છે કે પોતાને ભૂલી ગયા समय ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन होता है, उसी समय ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन भी ज्यों का त्यों है, जो उस अज्ञान को भी बताता है। जैसे ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हुआ, तो उसी समय ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन भी है जो कि ये बताता है अज्ञान हुआ, तो वो जीव पकड़ नहीं पाता है, उसमें आवरण रहता है, उसका क्या कारण है? तो ज्ञान है और वो ज्ञान से वो पकड़ता है ज्ञान रूप परिणमन को भी, पर फिर भी वो उसको नहीं आविर्भूत कर पाता है, इसका क्या कारण है?
जब ज्ञान ज्ञान रूप परिणमता है, तब ज्ञान का ज्ञान रूप तो परिणमन तो है ही, और ज्ञान में अगर तो अज्ञान रूप परिणमन भी है, उसका आवरण आया कहां से, क्यों आया, ऐसा प्रश्न है? ज्ञान में आवरण क्यों आया? ज्ञान ज्ञान रूप भी परिणमन करता है और अज्ञान रूप भी परिणमन करता है, तो फिर ज्ञान में आवरण कैसे आया?
आवरण कैसे आया? और फिर ये जब ज्ञान को ये आविर्भूत क्यों नहीं कर पाता है, ज्ञान का तिरोभूत बना रह जाता है, वो आविर्भूत करना चाह करके भी क्यों नहीं कर पाता है?
और वो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, वो तिरोभूत हो रहा है, यानी छिप गया है और आविर्भूत में प्रकट नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण? ऐसा प्रश्न है। तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन है, ज्ञान सामान्य रूप परिणमन है, ज्ञान वेदन रूप परिणमन है, और ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन है, वो ज्ञान विशेष रूप परिणमन का पहलू है। हम जो विशेष ज्ञान है उसमें अज्ञान है, वो क्यों है, उसमें आवरण क्यों है, तो विशेष ज्ञान के माध्यम से जीव दूसरे पदार्थ को जानते ही उसमें नमत्व कर लेता है, एकत्व कर लेता है, उसका अवलंबन लेकर जानता है, उसकी भिन्न सत्ता को भिन्न सत्ता रूप नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान को आवरण आता है, इसको अज्ञान कहते हैं। और पर पदार्थ को जान करके अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट ऐसी कल्पना करता है, उस कल्पना के वशात विशेष ज्ञान का अज्ञान का आविर्भाव रहता है और सामान्य ज्ञान के रूप में हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञान का सामान्य का ज्ञान रूप परिगमन का आविर्भाव क्यों नहीं होता है, इसका यही कारण है। इसलिए इस प्रकार की जो विटंबना है, दुख का कारण रूप परिस्थिति है, उसको मिटाने के लिए जीव को ज्ञान विशेष को गौण करके तिरोभूत करके ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करना चाहिए। स्वरूप लक्ष्य पूर्वक आत्मस्वरूप का ध्रुव स्वरूप का लक्ष्य के सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो सकता है, जिसको मूल सहजात्म स्वरूप की पहचान नहीं है और लक्ष्मीवाद स्वरूप नहीं आया हो, तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव कर नहीं सकता। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव तो स्वरूप के भाव भाषण से ही हो सकता है, ये पहले घटना घटी है भाववासन की, इस परिस्थिति पहले हुई हो, सब्जेक्ट कंडीशन को सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कोई भी जीव करता है तो उनको मानवभूति की प्राप्ति होती है, संयम दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ तो बात दूसरी है कि जीव अनादि से अपना स्वरूप को भूल गया है, वही इसका अज्ञान है, और इस प्रकार का अज्ञान ज्ञान के प्राप्त होने से ज्ञान मिलने से मिट जाता है, नाश हो जाता है, ऐसा भी संत मानना चाहिए। उसमें फिर कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि ज्ञान मिले और अज्ञान का नाश नहीं होगा, तो और शंका की गुंजाइश वहां नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमन कर रहा था। जो अज्ञान रूप परिणमन कर रहा था वही ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करने लग गया।
यहाँ बोल रहे कि जैसे कि अज्ञान मिटे तो ज्ञान होगा ऐसा नहीं लिया, यहाँ लिया ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटेगा, मतलब इसमें लिया ऐसा नहीं लिया है कि अगर अज्ञान मिटेगा तो ज्ञान होगा, यहाँ लिया ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटेगा, तो इस ये लॉजिक लेने के पीछे क्या अभिप्राय है?
अज्ञान तो है, तो अज्ञान मिटेगा तो ज्ञान होगा, तो अज्ञान को स्वयं मिटता है क्या?
जैसे ज्ञान का जीव को परिचय नहीं है, पहचान नहीं है,
उनका तो रास्ता दिखाएंगे, ज्ञान कैसे होगा वो तो कहना चाहते हैं। इस पत्र में जो कहने का इंटेंशन है, मोटिव है, वो तो वो है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। अब तो इतना ही प्रतिपादन करते हैं कि जिसको ज्ञान मिलता है उसका अज्ञान का नाश होता है, जहां तक ज्ञान नहीं मिलता है अज्ञान जो अनादि से है वो चालू ही चालू रहता है। अब कहीं कहते हैं कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, यह स्वाभाविक समझ में आता है, फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञान का आश्रय छोड़ता नहीं है, यही अनंतानंदी प्रसार का मूल है। सब सुंदर लिखा है, या ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञान की प्राप्ति अपने स्वरूप में से होनी चाहिए, आत्मा में से होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा, जबकि होती है आत्मा में से।
आत्मा में से होती तो पहले भी होनी चाहिए
इसलिए लिखा कि जिस आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ज्ञान प्राप्ति का कोई दूसरा इलाज है कि ज्ञानी के ज्ञानी के पास से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या हम प्रश्न पूछते हैं, हम वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या ज्ञानी ज्ञान को देता है क्या?
नहीं।
देता है,
देता है। आत्मा को देता है
ज्ञान तो इसका एक गुण या पर्याय है, ज्ञान ही तो पूरा आत्मा को देता है, फिर तो प्रभु ये आत्मीय क्या कृपालु देव को द्रव्यानंद का ज्ञान नहीं होगा क्या? क्या इस ज्ञानी के पास दूसरे का आत्मा होता है कि जेब में से निकाल करके दे, लेकिन देखो देखो 10,000 रुपया करके दिया, 5,000 रुपया दिया, कैसे देता होगा? आत्मसिद्धि में ऐसा क्यों नहीं लिखा? इस चर्चा हमने देवला देवी आश्रम में किया था, आश्रम में सजाए करते थे आश्रम में देवला देवी ते तो प्रभुए आपियो ऐसा लिखा, तो ते तो प्रभुए दर्शा दिए ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसे तो आत्मा को दर्शाते हैं, वास्तव में तो ऐसा ही बनता है कि ज्ञानी आत्मा को दर्शाते हैं, लेकिन जो आत्मा को का निर्देशन करते वक्त जिस चेष्टा से आत्मा दिखाया जाता है और जो आत्मा उस वक्त देखता है उनको ऐसा लगता है कि वो आप ही हो, दिखाया नहीं आप ही दिया है, मुझे दिखाया नहीं मुझे तो दिया है। अब देखो कि हमारे कोई स्वजन है, डॉक्टर ने बोल दिया ये तो खत्म हो गया है, प्राण स्पष्ट हो गया है, अभी मुर्दा है। अगर इसको कोई जीवंत कर दे तो हम उसको क्या करेंगे, कलम कहेंगे उसको, क्योंकि उसने प्राण दिया। तो मुमुक्षु जीव को अनुभव है कि मैं तो मुर्दा था, मैं क्या था, मैं तो चलता फिरता एक मुर्दा था, मेरे में कोई प्राण का संचार किया है, मुर्दे में प्राण का संचार किया है, तो ये श्री गुरु ने किया है, ज्ञानी पुरुष ने किया है। तो ज्ञानी पुरुष भी नहीं बोलेगा, उसको क्या बोला, प्रभु बोले। ऐसे ऐसे प्राण कोई ला दे तो उसको भगवान कहेंगे, तो यहाँ भी ज्ञानी छद्मस्त है फिर भी उसको प्रभु बोला है, उसको ज्ञानी नहीं बोला। प्रभु ने आप ही हो तो वाकई उनको क्या लगता है, मुमुक्षु के हृदय में बैठकर वो गाना लिखे हैं, खुद ज्ञानी है, ज्ञानी के स्थान पर बैठ करके वो गाथा नहीं लिखी है, मुमुक्षु के हृदय में बैठ करके वो गाथा लिखी है। मुमुक्षु को क्या अनुभव होता है, सबसे पहले करने की पद्धति है तो बेदी है। तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, बिना ज्ञानी किसी को ज्ञान करवाने न होने वाला भी है, ऐसी एक अनादि से वस्तु स्थिति है जिसका उल्लंघन हो सकता नहीं है। तो वस्तु स्थिति की मर्यादा है, पावे नहीं गुरु कर बिना ये भी अनादि स्थित, इसलिए वहां श्री गुरु का जो आदर है उसको निमित्त का आदर नहीं बोला जाता, उसी को आत्मा का आदर बोला जाता है। गुरुदेव ने वो बात कही भगवान अनुसार 827 नंबर का वचना बन गया, उसमें वो बात कही कि यहां ये निमित्त का विवेक नहीं है, निमित्त का आदर नहीं है, ये तो वास्तव में आत्मा का आदर है, आत्मा का विवेक है। जबकि गुरुदेव के विषय में अफवाहें ऐसी चलती थी तो निमित्त को मानते नहीं है, उपादान की बहुत बातें बताते हैं, निमित्त को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। तो निमित्त को मानते थे कि नहीं मानते थे, वो बात से शंका वाली रहती नहीं है, स्पष्ट लिखा है कि निमित्त का विवेक नहीं है, ये आत्मा का विवेक है। अगर ऐसा विवेक जिसको नहीं आता है वो निश्चय में भी भुला हुआ है, हमारा ज्ञान तो हमारे आत्मा में से आएगा, ज्ञानी से नहीं आएगा, तो निश्चय में भुला हुआ है ऐसा लिखा है, तो बोले ना वो निश्चय में भी भुला हुआ है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो व्यवहार में भी भुला हुआ है। ऐसी बात लिखिए, तो जो विषय का प्रतिपादन जब चलता है तो सभी ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, तो स्वाभाविक समझ में आता है, उसमें अस्वाभाविक कोई बात नहीं है, वो स्वाभाविक समझ में आता है। जिसको उस तरह से समझ में नहीं आता हो उनकी समझ अस्वाभाविक है, मानी काल्पनिक है, अस्वाभाविक माने स्वाभाविक समझ में आता है। फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञान का आश्रय छोड़ता नहीं है। अज्ञान मैंने कुल धर्म में जो गुरु है, गुरु के स्थान में होते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होता है, हमारे संप्रदाय में तो उनको साधु है, गुरु है, उनको जाना चाहिए और उसको मानना चाहिए। तो उनका आश्रय गुरु नहीं छोड़ता है। सरकार में हमारी समाज वहां पूरी समाज वहां जाती है, हमारे संप्रदाय की पूरी समाज वहां जाती है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी टीका टिप्पणी होगी क्या? हमारा समाज में जो स्थान है वो स्थान बना रहेगा नहीं, उसमें फेरफार हो जाएगा। लोक लज्जा, लोगों की शर्म से वो उनका आश्रय नहीं छोड़ सकता है और ज्ञानी का आश्रय नहीं कर सकता है।
संप्रदाय बुद्धि वालों को और संकुचित बुद्धि वालों को क्या कभी भी धर्म प्रकट हो सकता
है? नहीं हो सकता है। ऐसे संप्रदाय बुद्धि वाले को धर्म प्रकट हो सकता है कि कभी हो सकता नहीं है। क्यों? कि इसका आश्रय छुपेगा तब ज्ञानी का आश्रय होगा, दोनों का आश्रय एक साथ हो सकता नहीं है। हम इधर भी जाए इधर भी जाए बात बनने वाली नहीं है।
ये संकुचित बुद्धि का सूचक है।
हाँ, संकुचित बुद्धि है। हमको हमको हमारे संप्रदाय वाले कोई मानेंगे, दूसरे को मानेंगे नहीं, तो ये संकुचितता होगी। इसलिए कृपालु देव ने मात्र विशालता से लिया है कि अन्य मत में भी मार्गानुसार पुरुष होते हैं। जो निरंजन फल को पूजने वाले हैं, मेरे पाने वाले हैं, मेरे वो भगवान होने वाले हैं, ऐसे आत्माएं अपनी मजबूत होते हैं। इसलिए अन्य मत है ऐसा करके एलर्जी होना चाहिए नहीं। तो खास करके अपने अपने संप्रदाय की पूर्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसे जाने अनजाने में ऐसी मान्यता हो जाती है।
इसी जैसे हम लोगों के जो तीर्थंकर देव हुए हैं वर्तमान के, तो वो एक भी जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे,
क्षत्रिय कुल,
सब क्षत्रिय।
उन जमाने में क्षत्रिय लोग भी जैन थे। आज के जमाने में जो क्षत्रिय लोग जो जैन नहीं है, अजैन है, लेकिन उस जमाने में क्षत्रिय लोग थे जो जैन थे। जैसे ये रामचंद्र जी हुए हैं बहुकुल में, तो जैन कुल था। श्री कृष्ण हो गए हरिवंश में, तो ये जैन कुल था। कब जैन हुए उसका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन काफी आचार्यों ने पुराण देखते हुए उनकी आगे वाली पीढ़ियों का वो जैन थे इसका वर्णन किया है, बहुत सी पीढ़ियों का वर्णन किया है। करीब एक तृतीयांश ग्रंथ इसमें लिखा है कि वो इनके दादे दादा वन के दादे उनके दादा उनका दादा वो जैन उसके नाम खान लिए, जबकि इसके नए नए संप्रदाय हो गए। श्री कृष्ण का भी नया संप्रदाय हो गया, रामचंद्र जी का भी नया संप्रदाय हो गया। तो और संप्रदाय वाले के पास उतनी वंशावली नहीं है जितनी हमारे आचार्यों के पास है। तो इस बात का सबूत है कि उसने सही लिखा था, दूसरों ने वो ग्रंथ लिखे वो सही नहीं लिखे, क्योंकि वो इनके पूर्वजों को नहीं जानते थे, हम तो इनके पूर्वजों को भी जानते हैं ऐसा करके। तो वो जैन थे रामचंद्र। रामचंद्र जी भी दीक्षा लेकर के वो विष्णु कहलाए और श्री कृष्ण को जो द्वारका बनी वो देव बनाते हैं सोने की द्वारका बनाई 16,108 नाने थे तो 16,108 महल बनाए प्रत्येक रानी के अलग अलग और प्रत्येक रानी को पूजा करने के लिए जिन मंदिर बनाए 16,108 द्वारका जो अपने मंदिर में जाएगी पूजा करने तो जिन मंदिर बनाए ऐसे बनाए पर दूसरे मत के मंदिर नहीं बने द्वारका में आज एक एक का नाम निशान नहीं है वहां 16,108 मंदिर बने जिन मंदिर बने थे देवों ने बनाए वो भी सोने के बनाए थे महल भी सोने के और मंदिर भी सोने के इसलिए वो द्वारका सोने के थे ऐसा बोलने में आते हैं आज भी और जैन नहीं होते तो जैन मंदिर कहां से बनता रावण भी जैन था वो रामायण को लिखे रविशंकराचार्य ने पद्म पुराण नाम के लिखे तो राम रावण का जब युद्ध चलता है तो उन दिनों में तो शाम को युद्ध समाप्त होगा जब सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाता है तो बीच में रावण है उसने देखा कि हमारे लड़ाई में हम हार रहे हैं थोड़ी और विद्या प्राप्त कर ले तो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में तो शांतिनाथ भगवान का जिनालय अपना लंका में बनवाया था उसमें वो साधना के लिए बैठ जाता है और स्ट्रिक्ट विटो पावर से ऑर्डर किया हमारी साधना चल रही है युद्ध में कुछ भी परिस्थिति है हमको साधना से विचलित मत करिएगा हमारी साधना में इतने दिन तक हमारी साधना चलेगी बाद में हम आ रहे हैं वाला और मैं सब विद्या को प्राप्त करता था शस्त्र की विद्या को प्राप्त करता था लेकिन जिन मंदिर का वहां उल्लेख है वो भी जैन था और हमारे रामायण के अनुसार वो भावी तीर्थंकर है लक्ष्मण जी भी भावी तीर्थंकर है तो रामचंद्र जी तुलसी भाव में मोक्ष में पधारे और सीता जी वही रावण के गणधर होने वाले हैं क्या पर्यायों की विचित्रता है जिस सीता जी का हरण करके राम रावण का युद्ध हुआ जिसको आज भी रामायण बोलते हैं किसी का युद्ध हो जाता है तो क्या होगा तो रामायण हो गई कोई एक तीर्थंकर बनेगा दूसरा जी जिसका गणतंत्र कहते हैं कि लोक लज्जा के कारण से अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ना यही अंतानुबंधी कषाय का मूल है उसने चोरी किया इसलिए हिंसा किया इसलिए अंतानुबंधी कषाय ऐसा नहीं कहा जो गुरु नहीं है ज्ञानी नहीं है उसको ज्ञानी या गुरु मानना यही अनंतानुबंधी कषाय का मूल है क्योंकि धर्म से विरुद्ध यहां से घूमते चले जाते हैं जो धर्म विरुद्धता होती है सच्चे धर्म की विरुद्धता होती है यही कारण से होती है और फिर अनेक प्रकार के दोष की उत्पत्ति दोष की परंपरा मूल में यही कारण से होती है इसलिए ज्ञान की प्राप्ति जिसको चाहिए उसे ज्ञानी की इच्छा से वर्तन करना ऐसा जिनारम आदि सर्वशास्त्र कहता है बोलता है सभी शास्त्र यही बोलता है कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए उसको ज्ञानी की इच्छा और आज्ञा से वर्तना चाहिए आज्ञा शब्द तो दूसरे मिलेंगे ज्ञानी की इच्छा माने आज्ञा मैंने इसकी इच्छा ही आज्ञा होती है। आज्ञा तो आज्ञा होती ही है, लेकिन इसका विकल्प हो, कोई इच्छा हो, मेरी आज्ञा सुनिश्चित है। ज्ञान की प्राप्ति जिसको चाहिए उसे ज्ञानी की इच्छा से वर्तन करना, ऐसा दिनांक आदि सर्वशास्त्र कहता है, यह शास्त्र की आज्ञा है। अपनी इच्छा से प्रवर्तन करने और करते करते अनादि से जीव भटक रहा है। उतारी इच्छाएं प्रवर्तता अनादि काल की रखियो, आप गुजराती से उतारी इच्छाएं प्रवर्तता जीव अनादि काल से। भटका है क्यों? अनादि से भटका है कि ज्ञानी की इच्छा से वर्तन नहीं किया, ज्ञानी की आज्ञा से वर्तन नहीं किया, अपनी इच्छा के अनुरूप जो वर्तता है वो तो अनादि से करता ही है, अभी भी करता है, अनादि से करता है, तो भटका है, भटकता रहेगा। जब लोग प्रत्यक्ष ज्ञानी की